ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर निताई की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विजित थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त। हरे नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। जय श्री कृष्ण। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्णा, ओम नमो शिवाय। तो फ्रेंड्स, आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और जो हम लोगों को पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, तो फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर 18 कर रहे हैं, है ना, अध्याय 18, उपसहार संन्यास की सिद्धि, द परफेक्शन ऑफ रिनन्सिएशन पे हम बात कर रहे थे। तो कल हमने दो वर्सेस किए थे, 67 और 68। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, भगवद गीता में ना हमारे सुप्रीम फादर भगवान श्री कृष्णा ने, हमारे बेस्ट फ्रेंड ने हमें जो दिव्य ज्ञान दिया, और वो दिव्य ज्ञान क्या वो पूरे ब्राह्मण को दे रहे हैं या उन लोगों को ही मिल रहा है जिनके भगवान के प्रति थोड़ी निष्ठा है, है ना। मतलब जो कम से कम अपनी बात करते हैं तो जो इस सत्संग में पहुंचे उनको ये दिव्य ज्ञान मिल रहा है ना। तो भगवान ने चुना है उन लोगों को जिनके पिछले जन्मों के कुछ खाते रहे होंगे। तो भगवान चाहते हैं कि तुम इस दिव्य ज्ञान के पात्र बनो, तुम्हें ये दिव्य ज्ञान मिले। और साथ साथ में रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि तुम उन लोगों को मत बताना जो मेरे ऊपर श्रद्धा नहीं रखते, मुझसे ईर्ष्या करते हैं। मतलब जो भक्ति में रत नहीं है, है ना। भक्ति मतलब जो अपने वेदों को नहीं मानता, अपने शास्त्रों को नहीं मानता, संत महात्माओं, अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा प्रेम नहीं रखते, तो ऐसे लोगों के नहीं कहना चाहिए। और जो मेरी निंदा करते हैं, मुझसे द्वेष करते हैं, उनको भी ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। परंतु भगवान कह रहे हैं जिनमें ये सब दोष नहीं हो, ऐसे भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक उत्साह से मेरी बातें तुम्हें कहनी चाहिए। और 68 वर्ष में भगवान ने शुद्ध भक्ति कोई कैसे प्राप्त कर सकता है, इसका फॉर्मूला बताया है। देखो, भगवान ने क्लियर बताया इस श्लोक में कि जितना हम भक्ति को बांटेंगे उतनी ही हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपके कॉन्शियसनेस में फिर वही बातें रहती हैं। आप भगवद गीता सुन रहे हो, लेकिन अगर आप वो वाले स्टूडेंट हो कि सिर्फ एक घंटा सुना और बाकी का टाइम आपने मन गढ़ंत जीवन जिया, है ना, भगवान की बातों को साइड कर दिया, जैसे कि हम पहले भक्ति करते थे, दो टाइम की भक्ति की और बाकी का अपना मन गढ़ंत जीवन जिया, है ना। और सत्संग भी हम सुनने जाते थे मंदिरों में, बहुत सत्संग सुने होंगे बचपन से लेकर अभी तक सुन रहे थे हम, लेकिन किया क्या हमने, कुछ भी अपने अंदर उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया, है ना। अगर हम वैसे स्टूडेंट है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं भगवान, है ना। भगवान उनकी बात कर रहे हैं, उस शुद्ध भक्त की बात कर रहे हैं कि जो 24/7 मेरी कॉन्शियसनेस में रहकर अपने सारे कर्म करता है, चाहे घर की ड्यूटीज है, चाहे बाहर की ड्यूटीज है, चाहे अपने बच्चों को पालने पोसने की जिम्मेदारी है, वो मेरी कॉन्शियसनेस में रहकर जो सारे काम करता है, उस भक्त की बात कर रहे हैं भगवान की। उन भक्तों को बता रहे हैं कि भाई कैसे कोई शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर पाएगा, है ना। जितना हम, भगवान कह रहे हैं, हम भक्ति को बांटेंगे उतनी ही हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे कि सुना भी होता है ना हमने, शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव एंड लव इज डिवोशन। जितना जितना हम इन चीजों को समझकर अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे ना फ्रेंड्स, जो इस रास्ते पर छोटी सी भी थोड़ी सी भी श्रद्धा रखते हैं, फेथ रखते हैं परमात्मा पर, है ना, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, उनको ब्लेमिंग नहीं करते रहते, उनको थैंक यू का भाव रखते हैं, तो उनका भी फायदा होगा, वो भी कुछ कदम भगवान की तरफ बढ़ जाएंगे, और जो समझा रहा है उसका भी ये फायदा होगा कि भगवान खुश हो जाएंगे उससे, है ना। देखो, भगवान सिंपल अपने उन बच्चों से बहुत खुश हो जाते हैं फ्रेंड्स, जो अपने भाई बहनों की भलाई के बारे में सोचते हैं। भाई बहन मतलब कि अपनी वही चार लोगों के कॉन्सेप्ट से उठना है हमें, भाई बहन मतलब ये सारा संसार वासुदेव कुटुंबकम है, है ना। तो भगवान किसको ज्यादा प्यार करेंगे, जो अपने चार बंदों के कॉन्सेप्ट में ही घुसा हुआ है, उन लोगों को खुश करने में लगा हुआ है, कि भगवान उनसे ज्यादा खुश होते हैं जो सबको अपने भाई बहन मानते हैं और उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं एक्चुअली, है ना। और सबसे बड़ी भलाई, सबसे बड़ी गरीबी फ्रेंड्स, आध्यात्मिक गरीबी को दूर करना है, स्पिरिचुअल पावर्टी को दूर करना है। इंसान के पास देखो, अगर पैसे कम है तो भी वो खुश रह सकता है ना। जरूरी नहीं होता, हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है वो व्यक्ति बहुत खुश रहता है, तो ज्यादातर वहीं पे फ्रेंड्स मेंटल हेल्थ इश्यूज, फिजिकल हेल्थ इश्यूज वहां पे रहते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है, वो झोंपड़ी में रहता है ना, और किसी के घर से क्रॉस होगा, उसका 3 कमरे का घर है, 4 कमरे का घर है, तो उससे क्रॉस होगा, उसको लगेगा यार कितना अच्छा घर है ना। लेकिन उस घर में जो व्यक्ति रह रहा है उसको पता ही नहीं है कि मैं कितने अच्छे घर में रह रहा हूँ, वो अलग अपने ही दूसरे दुखों में अपना टाइम वेस्ट कर ही जा रहा है ना, उसको क्या लग रहा है कि मेरे से जैसा ज्यादा दुखी कोई नहीं है, है ना। और जो तीन चार रूम वाला व्यक्ति है ना, वो किसी बहुत बड़े महल से क्रॉस करेगा तो वो सोचेगा यार इसमें रहने वाला व्यक्ति कितना सुखी होगा, है ना। और जो महल वाला रहने वाला व्यक्ति है, हो सकता है उसको भी अपने सुखों का पता ही ना हो, है ना, वो अलग अपने किसी और दुखों से दुखी हुआ पड़ा है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है फ्रेंड्स की, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारे घर होंगे तो वो बहुत खुश होगा, है ना। इंसान वो भी खुश रह सकता है जिसके पास ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती है, मटेरियल चीजें ज्यादा नहीं होती हैं, वो भी खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर वो भगवान से जुड़ा हुआ हो अंदर से, तो मतलब उसके पास मटेरियल कंफर्ट ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर वो भगवान से जुड़ा हुआ है अंदर से, लाइफ को समझता है वो डीपली, तो वो भी खुश रह सकता है फ्रेंड्स, है ना। और अगर एक व्यक्ति के पास बहुत सारे मटेरियल कंफर्ट्स होते हैं लेकिन स्पिरिचुअल पावर्टी हो, तो वो कभी खुश नहीं रहेगा, वो दुखी रहेगा। वो कैसे दुखी होना है हमें, उसके बहाने ढूंढता रहेगा। और फ्रेंड्स एक बात हमेशा गांठ बांध के रख लो कि जो चीज हमारे पास नहीं होती ना, हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम मन उसी को फॉलो करता है। मतलब अगर हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हम किसी को मारुति गाड़ी में भी देखेंगे तो हमें लगेगा यार इसका जीवन कितना सुखी है, कंफर्टेबल लाइफ है उसकी, की गाड़ी में जा रहा है, है ना। लेकिन अगर हमारे पास मारुति गाड़ी आ गई तो हम क्या सोचेंगे, नहीं यार कोई 10-12 लाख वाली होंडा सिटी होनी चाहिए हमारे पास, है ना। अगर फिर चलो 2-3 साल बाद होंडा सिटी आ जाती है, फिर क्या लगता है, नहीं नहीं यार वो 18-20 लाख वाली गाड़ी होनी चाहिए हमारे पास कि उससे ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ हो जाएगी मेरी। जबकि वो 20-25 लाख वाली गाड़ी भी आपको सेम जगह पहुंचा देगी जो कि मारुति गाड़ी ने पहुंचाना था, है ना। लेकिन हम इन चीजों को फ्रेंड्स बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते। जो चीजें हमें मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं करते, लेकिन जो चीजें नहीं मिलती हमारा मन हमेशा उसके पीछे भागता रहता है। और ये सबके साथ रहता है, एक के साथ नहीं रहता, सबके साथ रहता है। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, एक्चुअली लाइफ की डीपली समझने लगते हैं, तो हम ये सब चीजें रियलाइज करने लग जाते हैं। फिर जो हम हमारे पास आज है ना, अभी है, गाड़ी नहीं भी है, घर नहीं भी है, तो हम उसमें भी खुश रहते हैं फिर। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें परमात्मा से जुड़ना पड़ता है ना, चीजें सीखनी पड़ती है। भगवत गीता में क्या कहा, ये सीखना पड़ता है। और आप देख लो बचपन से लेकर अभी तक हमें ये बातें किसी ने सिखाई, क्या हमारे पेरेंट्स ने, क्या हमारे फ्रेंड्स ने, है ना, क्या हमारे रिलेटिव्स ने ये बातें हमें सिखाई, कैसे खुश होना है और कैसे अपने दुखों से कैसे डील करना है, क्या ये बातें हमें सिखाई हमें हमारे पेरेंट्स ने या हमारे रिलेटिव्स ने? ये बातें कौन सिखा रहा है हमें? ये बातें हमें हमारी परमात्मा सिखा रहे हैं। भगवत गीता में जो चीजें उन्होंने 5000 वर्ष पूर्व बोली थी भगवान श्री कृष्णा ने, वो बातें आज भी फ्रेंड्स, उन बातों की आज भी इम्पोर्टेंस है, आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जो कि 5000 वर्ष पहले जो प्रॉब्लम्स थे ना हम सब की, ह्यूमंस की, आज भी वही प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं। अब देख लो वर्ल्ड में कितने डिप्रेशन के केसेस हम सोसाइटी में देखते हैं, दुख देखते हैं लाइफ में कि लोग अपने मन के दुखों से दुखी हुए पड़े हैं, है ना। देखो मैं बताया ना 99% हम लोग अपने मन से दुखी हैं। मन ने कोई चीज डिसाइड कर ली कि मेरे को दुखी रहना है, मेरे को ये चीज नहीं मिली, या वो किसी व्यक्ति के बारे में सोचते रह गए, उसने मुझे ये क्यों बोला, है ना। सोचो अपने थॉट के बारे में, सोचो कि क्या क्या सोचते रहते हो, उसके पास ये ज्यादा चीजें क्यों है, मेरे पास क्यों कम है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरी लाइफ इतनी अनकंफर्टेबल क्यों है, मेरी लाइफ में इतने दुख क्यों है। हमेशा क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि हमें अपने दुख ज्यादा लगते हैं, दूसरों के सुख ज्यादा लगते हैं और अपने दुख ज्यादा लगते हैं, सिंपल। तो जब हम ये बातें समझ जाते हैं, है ना, समझेंगे कैसे, अपने शास्त्रों के द्वारा, जहां पे भगवान हमें क्लियरली अपनी वाणी से हमें क्लियर चीजें हमें समझा रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें सुनना भी नहीं है, हमें वही अपना मनगढ़ंत जीवन ही जी। तो फ्रेंड्स सिंपल बात है, भक्ति में हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो हम चीजों को जैसे है ना वैसे देख पाते हैं, और हमें बाकी लोगों को भी इसमें गाइड करना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग डिवोशन में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते फ्रेंड्स, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सब बस मेरे कंफर्ट के लिए चीजें हैं, कि बस मैं समझ गई, मेरी लाइफ बेटर हो जाए, बस मैंने भगवत गीता पढ़ ली, बस मेरी लाइफ बेटर होनी चाहिए, है ना। लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स फ्रेंड्स, है ना, वो उसकी चिंता नहीं करते, दूसरों के बारे में सोचना, इसके बारे में वो चिंता नहीं करते। तो ये वाला एटीट्यूड फ्रेंड्स हमें अपने आप में नहीं लाना, क्योंकि फ्रेंड्स जो डिवोशन है, जो भक्ति है ना, मतलब एक पाथवे है लव का, कंपैशन और हेल्पिंग एटीट्यूड का, है ना। जितना ज्यादा हम समझें और फिर समझाएंगे, है ना। अब कई बार लोग बोलते हैं ना कि मैं तो बिल्कुल बिगनर हूं, मैं कैसे समझाऊंगी, है ना, कई बार बोलते हैं ना, और वो बिल्कुल उनको लगता है मेरी लाइफ कंफर्टेबल हो गई, अब मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी और को समझाने की, है ना। लेकिन जैसे स्कूल में होता था ना, अगर हम 7th में पहुंच गए, 8th में पहुंच गए, तो हम 3rd और 4th ग्रेड वाले बच्चों को समझा सकते थे, तो वैसे ही गॉड कॉन्शियसनेस में भी लेवल लेवल्स होते हैं फ्रेंड्स, है ना। अगर आपको समझ आ गया कि भगवद गीता में कोई भी आप श्लोक समझ रहे हो, है ना, आपको समझ आ गया, है ना, या ABCD मॉडल जो है वो हमारा समझ आ गया आपको, तो आप किसी को उतना ही समझा दो। आज आप भगवद गीता पढ़ रहे हो, है ना, आज आपने दो श्लोक किए मान लो, है ना, आप उसके नोट्स बना रहे हो, उसमें से आपको पॉइंट्स या पॉइंट्स बना रहे हो, तो पॉइंट्स से आप दूसरे को समझा सकते हो, है ना, ताकि उस इंडिविजुअल की जिंदगी में भी कुछ मात्रा में भक्ति बढ़े, उसको आनंद मिले, पीस मिले, बस इतना ही करना है हमें। देखो हम में से परफेक्ट कोई नहीं है, मैं अपनी बात करूं तो मैं तो क्लियर बोलती हूं, मुझे ना ये बातें कुछ पता थी, ना अभी भी पता, अभी भी मैं सीख रही हूं, बस जितना जितना मुझे पता लगता है मैं आपको बताती जाती हूं। तो जो भी हमें ज्ञान मिलता है ना फ्रेंड्स, उसको हमें शेयर करना है दूसरों के साथ, तो दूसरों का भी भला होता है और अपना भी भला होता है, क्योंकि परमात्मा हमसे खुश होते हैं, है ना, और गारंटी है कि हम भगवान श्री कृष्णा के प्योर डिवोटी हो जाते हैं फिर। हाँ जी, नेक्स्ट श्लोक पर लो अंत जी। हरी बोल।
हरी हरी बोल एवरीवन। अध्याय 18 श्लोक नंबर 70। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। तो फ्रेंड देखो, भगवान श्री कृष्णा इसमें हमें समझा रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति हम दोनों के संवाद मतलब भगवद गीता को पढ़ेगा अर्थात नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान रूप से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। मतलब भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवद गीता को अच्छी तरह से समझ लेगा, शरणागति के कॉन्सेप्ट को समझ लेगा, भक्ति के कॉन्सेप्ट को समझ लेगा, और ये समझेगा कि मुझे इस संवाद को बांटना है, मतलब प्रीचर बनना है, मुझे भगवान का पोस्टमैन बनना है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करेगा साथ में, तो वो ऐसा व्यक्ति भगवद गीता के द्वारा भक्ति के द्वारा आनंद और शांति को प्राप्त करता है औरों को भी भगवद गीता का संदेश बांटता है, है ना, भगवद गीता की इम्पोर्टेंस को समझता है ना, और बाकियों को भी इस संदेश को पहुंचाना चाहता है ना, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है फ्रेंड्स कि अगर कोई अच्छी चीज लगती है ना हमें कि यार इस चीज से मुझे फायदा हुआ, तो हमें क्या लगता है कि हमारे जो लव्ड वंस है, हमारे जो नियर एंड डियर्स है, उनको भी ये फायदा मिलना चाहिए, उनके जीवन में भी सुख आना चाहिए, है ना। और ये बातें आती कब है, जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवान से एक्चुअली हमारा कनेक्शन बनता है, तो हम जो अपने चार लोग है ना, इन लोगों के कॉन्सेप्ट से उठ के वासुदेव कुटुंबकम है ना, इस बात को हम समझ पाते हैं एक्चुअली, है ना। तो भगवद गीता फ्रेंड्स क्या है एक्चुअली, अर्जुन जो कि एक सोल को रिप्रेजेंट करता है और भगवान श्री कृष्णा जो कि सुपर सोल है भगवान, तो उनके बीच की जो कॉन्वर्सेशन है ना, जो हम सबके लिए भगवान ने अर्जुन के माध्यम से बताई है ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो इस पवित्र संवाद को, भगवद गीता की इस दिव्य नॉलेज को, इन सब बातों को जो अध्ययन करेगा, जो भी उसको डीपली स्टडी करेगा, तो भगवान कह रहे हैं फिर वो अपनी इंटेलिजेंस के साथ, अपनी बुद्धि के साथ मेरी पूजा करेगा और वो मेरी शरण में आ जाएगा। देखो फ्रेंड्स, बुद्धि के साथ पूजा करना और वैसे पूजा करने में क्या अंतर है, तो इस श्लोक में हमें ये समझना है, और दूसरा रीडिंग करने में यानी पाठ करने में और अध्ययन करने में क्या अंतर है। देखो गोलोक एक्सप्रेस में हम अध्ययन करते हैं और ज्यादातर लोग पाठ करते हैं समाज में, और पहले गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से पहले हम भी पाठ करते थे, लेकिन भगवद गीता से जब से हम लोग जुड़े हैं तब से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पाठ मतलब रीडिंग, रट्टा लगाना जैसे बच्चे करते हैं, है ना, और अध्ययन मतलब स्टडी करना, उसकी डिटेल में जाना, एक एक बात को समझने का प्रयास करना, है ना, भगवान श्लोकों में क्या बात कहना चाह रहे हैं, एक एक वर्ड को खोलना, है ना, एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, एक एक वर्ड के बहुत 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 सारे मीनिंग होते हैं फ्रेंड्स भगवान की, है ना, क्योंकि भगवान हमारी तरह इतनी बातें थोड़ी करते हैं, भगवान ने तो भगवद गीता 45 मिनट्स में बता दी थी, हम लोग तो समझ रहे हैं उनकी बातों को, है ना, कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी बातों को, उनके वर्ड्स को हम समझ पाए, तो हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा जो भी कॉन्वर्सेशन हुई, भगवान ने भगवद गीता का जो ज्ञान दिया हमें, अगर कोई अध्ययन कर ले, स्टडी कर ले इसकी, तो वो मेरी बुद्धि से पूजा करेगा। तो पूजा करने में और बुद्धि से पूजा करने में क्या अंतर है फ्रेंड्स, रट्टा मारने में और स्टडी करने में क्या अंतर है। जैसे बचपन में एग्जाम्स में कई बार हमें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होती थी, तो हम रट्टा मारते थे ना, ये रट्टा तो हम सबने मारा होगा, तो रट्टे में हम बड़े सुपरफिशियल होकर चैप्टर्स को रिपीट करते, करते हैं, है ना, उनको रिवाइज करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते रहते हैं रट्टे में, बट कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते, है ना। रट्टा तो हम मार रहे होते हैं चैप्टर्स को, पर क्लियरिटी नहीं आती क्योंकि समझ नहीं आ रही होती है। तो इस तरह के रट्टा मारने वाले लोग फ्रेंड्स धार्मिक होते हैं, है ना, क्योंकि उनको क्या पता है, बस जोत जगा लो, इस समय आरती कर लो, धाम यात्रा कर लो, मंदिर जाओ, बट कनेक्शन नहीं होता फ्रेंड्स। धार्मिक होते हैं ऐसे लोग, लेकिन उनको पता नहीं होता वो कर क्यों रहे हैं। और भारत में मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी लोग धार्मिक होते हैं, वे आध्यात्मिक नहीं होते फ्रेंड्स। और सेकंड कैटेगरी जो लोग होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से चलते हैं, उनको हर एक कॉन्सेप्ट की गहरी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो वो जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले लोग स्पिरिचुअल होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। पहले वाले लोग पूजा कर रहे हैं और दूसरे वाले लोग बुद्धि से पूजा करते हैं, वो दो टाइम वाली भक्ति में एंगेज रहते हैं कि ठीक है यार मेरे पेरेंट्स करते तो मुझे भी करनी चाहिए, है ना, मुझे भी आरती कर लेनी चाहिए। तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि एक होता है ना कि डर होता है हमें, या हमारी डिजायर्स पूरी हो जाएं इसलिए हम पूजा करते रहते हैं, या एक डर होता है कि चलो यार सब करते हैं तो मुझे भी कर लेनी चाहिए, है ना, ताकि भगवान मुझसे खुश हो जाएंगे कि मेरी डिजायर्स पूरी हो जाएंगी। फिर पहले वाले लोग भी भोग लगाएंगे, दूसरे वाले लोग भी भोग लगाएंगे। दिखने में एक ही एक्टिविटी है, आपको बाहर से दिखने में कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन एक ही एक्टिविटी भगवान को 1 किलो खुश करेगी और दूसरे की एक्टिविटी भगवान को 10,000 किलो खुश कर देगी फ्रेंड्स। एक के अंदर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि क्यों मैं भोग लगाती, जब वो भोग लगा रही है तो उसका ध्यान कहाँ पे है, उसका ध्यान किचन में खाना बनाने में लगा हुआ है, है ना, और उसका ध्यान इसमें लगा हुआ कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और दूसरे का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ईश्वर ने ही सब कुछ दिया हुआ है, ये उनकी ब्लेसिंग्स है। तो इस एक्टिविटी के द्वारा, भोग के द्वारा मैं अपना थैंक यू, अपना आभार उनको प्रकट करना मेरी मॉरल ड्यूटी है, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब उनको भोग दे रहे हैं तो हम उनकी ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, है ना, अपना थैंकफुलनेस प्रकट कर रहे हैं, अपना आभार प्रकट कर रहे हैं कि भाई प्रभु जो कुछ भी आपने दिया है, मेरी क्या औकात है उसके आगे, है ना, कितना कुछ आपने ऐसा दिया है जो तो मैंने मांगा ही नहीं था, है ना। तो एक आभार प्रकट करने का तरीका है फ्रेंड्स कि प्रभु ने हमें कितना कुछ देते हैं, कितना कुछ, एक लंबी 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 लिस्ट होती है जो प्रभु ने हमें बिना मांगे चीजें देते रहते हैं। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होते हैं, 10 में से 8 चीजें मिली हैं, जो 2 चीजें नहीं मिली हमारा ध्यान सिर्फ उसमें ही लगा रहता है कि मुझे ये चीजें क्यों नहीं मिली, सबको तो मिल गई, सबके पास तो ये कंफर्ट्स हैं, सबके पास ये चीज नहीं है, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिली। तो दूसरे का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सब कुछ ईश्वर ने दिया है और मुझे उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, मुझे उनको आभार प्रकट करना है ताकि हम पापों से मुक्त हो सके। और वह प्रभु का स्मरण करता हुआ, आभार व्यक्त करता हुआ एक व्यक्ति भोग लगा रहा है, है ना, उनकी पूजा अर्चना कर रहा है, उनके आभार प्रकट कर रहा है, थैंक यू कर रहा है, आरती कर रहा है, थैंक यू कर रहा है, मंदिर जा रहा है, थैंक यू कर रहा है, चीजें नहीं मांग रहा है वो, उनका आभार प्रकट करने जा रहा है मंदिर, धाम यात्रा कर रहा है तो उनको थैंक यू करने जा रहा है, घर में ही पूजा अर्चना कर रहा है उनको थैंक यू कर रहा है, दिन में 10 बार थैंक यू कर रहा है, रात को सोते हुए थैंक यू कर रहा है, सुबह उठते हुए थैंक यू कर रहा है, ना। बाहर से दोनों एक्टिविटी सेम लगती है फ्रेंड, एक पूजा हो रही है और एक बुद्धि से पूजा हो रही है। तो ये नहीं सोचना है कि पहले वाली का कोई फायदा नहीं, उसका भी फायदा है, बट वो दूसरी एक्टिविटी भगवान को ज्यादा खुश करती है। एक्चुअली भगवत गीता को हम समझ पा रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये होता है कि हम भगवत गीता को समझ पा रहे हैं, है ना, 24/7 हम भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, घर का कर रहे हैं, बाहर का कर रहे हैं, बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, इस भाव से करना है कि मेरी प्रभु के लिए सेवा है, दुखी रहकर हमें ये काम नहीं करने हैं, खुश रहकर हमें सारे अपने काम करने हैं, और जो मिल जाए उसमें प्रभु की इच्छा समझनी है, सिंपल। वो पहला व्यक्ति भी फ्रेंड्स जो कुछ कर रहा है ना, वो उससे तो बेटर ही है जो कुछ नहीं करता। और जो सेकंड कैटेगरी है, जिसकी तैयारी हम भगवत गीता पढ़ते हुए करते हैं, अपने आप ही ऑटोमेटिकली अंदर से परमात्मा करवा देते हैं, उससे आप क्या करोगे, बुद्धि से परमात्मा की पूजा करोगे। आप इसलिए नहीं करोगे कि मेरी डिजायर पूरी हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, आप में क्या भाव आ जाएगा, ये जो कुछ भी मिला है ना आज तक, बहुत ज्यादा मेरी औकात से बहुत ज्यादा आपने दे दिया प्रभु, उसके लिए आप थैंक यू करते हो, मंदिर में जाते हो, घर के मंदिर में पूजा करते हो, हरिनाम करोगे, चैंटिंग करोगे, तो आपको पता होगा क्यों करते हैं, भोग लगाया जा रहा है, आरती कर रहे हो, है ना, अर्चा विग्रह की पूजा कर रहे हो, भगवत गीता पढ़ रहे हो, तो आपको पता है क्यों कर रहे हो। तो जब आप इस तरह से चलोगे तो भगवान कह रहे हैं इसका अल्टीमेट फल होता है, भगवान खुश होते हैं, और भगवान खुश होते हैं हम भी खुश होते हैं। तो फिर भगवत गीता के अध्ययन से फ्रेंड्स, फिर वो व्यक्ति टाइम पास वाली, अपने मन वाली भक्ति जो होती है ना, जो हम बिना समझे हुए करते थे, फिर हम ऐसी भक्ति नहीं करते और टाइम पास वाली एक्टिविटी एक्टिविटीज भी नहीं करते, डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन का रास्ता अपनाते हैं हम लोग, और उसका फेथ पत झड़ के पत्तों जैसा नहीं होता कि किसी ने जरा सा कमेंट मारा तो हिल गए, है ना, कि यार तुम तो बड़ी भक्ति कर रही हो आजकल, बड़ी भगवत गीता पढ़ रही हो, है ना। और हम उन लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं बोलते हैं जो बचपन से ये सब चीजें कर रहे हैं। ये किसकी गलती है कि हम लोगों ने बचपन से ये भगवत गीता नहीं पढ़ी, या अपने स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ा हमने, अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, है ना। हमारी गलती है ना कि हम लोग दुनियादारी में उलझे रहे, दुनिया में सुख ढूंढते रहे और दुनिया से फिर दुख मिलता है ना। तो एक व्यक्ति जो बुद्धि से फिर जो भक्ति करता है ना, उसके हर एक कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स क्लियर होते जाते हैं। फिर दुनियादारी का कोई भी तूफान कुछ भी हो जाए आपकी जिंदगी, आपकी आस्था को हटा नहीं सकता, है ना। तो जहां पे फिर जब आप खड़े हो जाओगे ना, वहां पर 10,000 नास्तिक भी खड़े हो जाएं, तो उसमें से सारे भक्त नहीं भी बने फ्रेंड्स, तो 500 तो जरूर भक्त बन ही जाएंगे, क्योंकि आपकी श्रद्धा, विश्वास और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी होगी कि आपकी वाणी में एक अलग सा प्रभाव आ जाता है ना, आपके बिहेवियर में चेंजेस आती है ना, आप अपने आप पे वर्क करते हो और आपकी वाणी में एक अलग सा प्रभाव आ जाता है ना। जब आप इन बातों को, भगवद गीता की बातों को अपने जीवन में उतारते हो, और फिर क्या कहते हो, कृष्य वचनवतव, पढ़ने वाले हम ये श्लोक, नेक्स्ट श्लोक 73 पढ़ेंगे हम वेडनेसडे को, जिसमें अर्जुन ने क्या कहा है, कृष्य वचनम तव। जब हम भगवत गीता को एक्चुअली हम समझ लेते हैं ना अंदर से, कृष्य वचनम तव का मतलब कि जो आप चाहते हो भगवान, अब मैं आपकी आज्ञा अनुसार सारा कुछ करने को तैयार, फिर हम दुनियादारी की बातें सुनने की जगह हम परमात्मा की बात सुनना शुरू कर देते हैं, अंदर से गाइडेंस आना शुरू हो जाती है, और हमें क्या लगता है कि हम तो बेवकूफ है, हम नहीं आपकी सारी बातें समझ पाएंगे, लेकिन आपने ही मुझे ये बातें समझानी है, मैं भी समझना चाहती हूँ भगवत गीता, आपने ही मेरे को ये बातें समझानी है। हम रोज ये प्रेयर करते हैं, रोज ये प्रार्थना करते हैं, है ना, रोज ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु हम भी आपकी बुद्धि से पूजा करें, हर एक कॉन्सेप्ट को हम आपके अच्छे से समझ पाए, है ना, और आपसे प्रेम कर सके, ये वाली प्रार्थना हमें रोज करनी है, है ना। तो हमें क्या करना है फ्रेंड, सिंपल, भगवत गीता को समझने की कोशिश करनी है हमें, है ना, भगवान के आगे ये प्रेयर्स करनी है, प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं भी समझना चाहती हूँ आपके भगवत गीता को, मैं समझना चाहती हूँ मैं हूँ कौन, है ना, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ, परमात्मा के बारे में जानना चाहती हूँ, विचारों के बारे में जानना चाहती हूँ, डिजायर्स के बारे में जानना चाहती हूँ, कितना कुछ है हमारे लिए जानने को, लेकिन हम कहाँ घुसे हुए, हम दूसरों की दुनिया में घुसे हुए हैं, दूसरों के जीवन में हम लोग इंटरफेयर करते रहते हैं, है ना। हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं फ्रेंड जो हमें जाननी चाहिए, और टाइम निकल रहा है हमारे हाथों से, है ना। तो भगवत गीता को खाली रीडिंग नहीं करनी है, है ना, खाली रीडिंग नहीं करनी है ना। कई लोगों से पूछो ना, आपने भगवत गीता पढ़ी, हाँ जी मैंने तो पढ़ी है 2-3 बार, बहुत बार पढ़ी है मैंने तो भगवत गीता, और कुछ बात करो तो बात से पता चल जाता है कि भाई भगवत गीता सिर्फ पढ़ी हुई है, उसको उतारा नहीं है जीवन में, है ना। तो अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हो लेकिन समझ नहीं पा रहे हो, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप पढ़ते रहो, भगवान से प्रार्थना करते रहो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझना है, फिर एक रीडिंग में समझ नहीं आ रहा, 2 रीडिंग में समझ नहीं आ रहा, 3 रीडिंग में आपको आएगा ही आएगा। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मुझे भी कोई भी समझ नहीं आई 2-3 रीडिंग्स तक, मुझे समझ नहीं आई है, जब तक कि मैं खुद से नोट्स बनाने लगी, सिंसियरिटी से एक्चुअली मैं करने लगी, तब मुझे समझ आने लगी, है ना। जब तक मैं सुन रही हूँ अच्छा लग रहा है, नो डाउट बहुत अच्छा लगता है, कोई भी सत्संग हम ज्वाइन करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, मंदिर में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन जब हम सिंसियरिटी से करने लगते हैं कुछ चीजें, तो और डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। और अगर आपको लगता है कि किसी और से समझ सकती हूँ मैं, है ना, कोई मेरे को भगवत गीता, जैसे हम यहाँ पे पढ़ा ही रहे हैं भगवत गीता, गोलोक एक्सप्रेस में पढ़ाते हैं भगवत गीता, बहुत सारे मेंटर्स हैं, है ना, मतलब अपने घर में अगर आप पढ़ रहे हो, मान लो कोई नए डिवोटी आए हैं, है ना, हो सकता है वो घर में पढ़ी हो उन्होंने, लेकिन बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें कोई बोल रहा है गोलोक एक्सप्रेस में, कोई कई मेंटर्स है, तो अगर बोल रहे हैं तो हमें समझ लेनी चाहिए, उनको उनकी बात सुन लेनी चाहिए, तो इजिली घर बैठे बिठाए हमें भगवत गीता का ज्ञान मिल जाता है। तो हमें एजिटेट नहीं करना है फ्रेंड्स, कम से कम मंदिर में बोलना शुरू कर दो, प्रार्थना करना शुरू कर दो कि प्रभु मैं भी आपकी बातें समझना चाहती हूँ, है ना। फ्रेंड्स होता क्या पता, हमारे मन में अंदर बहुत सारा कचरा होता है, बहुत सारी बातें होती हैं कि ये भगवान की बातें जो हमने की नहीं है सारी उम्र, है ना, तो वो बातें अंदर घुसती नहीं है, लेकिन जब अंदर से क्लैरिटी होने शुरू होती है ना, अंदर जब मन शांत होने लगता है ना, थॉट्स कम होने शुरू होते हैं ना, फालतू कचरा निकलने लगता है ना, तो अपने आप ही भगवत गीता जैसा लगता है, कितना ईजी बताया यार, कितना ईजी है सब कुछ, कितना ईजी है, फिर सब कुछ ईजी लगने लग जाता है जब परमात्मा बुद्धि में बैठ जाते हैं, जब बुद्धि हमारे दिव्य होने लगती है ना। क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपकी जो पूजा होगी ना फ्रेंड्स, श्रद्धा होगी भगवान के लिए, वो डे बाय डे बढ़ती जाएगी, वो इम्प्रूव होती जाएगी ना, तो आपको डिवोशन करने में ज्यादा मजा आ जाएगा। तो जब किसी चीज में मजा आने शुरू होता है, तो फ्रेंड्स जो हमारी अपनी जो लाइफ है ना, मटेरियल लाइफ, ये जो लाइफ की जर्नी है, ये भी इंजॉयबल हो जाती है, आनंद आने लगता है, शांति मिलने लगती है ना। थैंक यू सो मच। श्रीमद भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। राम हरे राम 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 हरे हरे बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल हरी हरी बोल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ जय श्री कृष्णा हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स अब रिव्यूज की तरफ चलते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा या आपके कोई एक्सपीरियंसेस या तो आप शेयर कर सकते हो। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल एवरीवन। मेरा जी आज का सत्संग बहुत ही दिव्य और बहुत ही आनंदमय रहा। आज का वर्ड्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। तो सच में फ्रेंड्स अब हम सब अध्याय 18 में जो कि भगवद गीता का कंक्लूजन है उसमें आ चुके हैं और मोना जी के इस सत्संग के माध्यम से हमने मोना जी ने जो भी हमें वर्ड्स कराए सच में इतनी डीपली और इतनी अच्छी तरह से उन्होंने समझाए हैं कि हमें वो अच्छे से समझ भी आ रहे हैं और प्रभु श्री हरि की कृपा से प्रभु का ये जो दिया हुआ दिव्य ज्ञान है उसे हम अपने आचरण में भी लाने के काबिल हो रहे हैं। सच में मोना जी आपने ये बात आज जो बात हमें समझाई के जब प्रभु के इस दिव्य ज्ञान को हम डीपली इस पे मतलब आत्म मंथन करेंगे प्रभु के इस दिव्य ज्ञान को हम समझेंगे अच्छी तरह से और अपने आप में आत्म मंथन करेंगे कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है क्योंकि केवल सच में बोलने से कुछ नहीं होगा। केवल हम बड़ी बड़ी बातें कर लें और जो भी प्रभु का दिया हुआ ये ज्ञान है उसे हम अपने आचरण में लाने के काबिल ही ना बन सके तो सच में मेरा तो इस श्लोक से यही मेरी लर्निंग बनी है। तो ये सब प्रभु का दिया हुआ ज्ञान जो है हमने उसे समझा ही नहीं हम अपने दूसरी मतलब मटेरियल वर्ल्ड में ही हम फंसे रहे और प्रभु के इस दिव्य ज्ञान को हमने ना तो समझा ना हमने बुद्धि में बिठाया। तो बस इन शॉर्ट मैं यही कहूंगी कि प्रभु श्री हरि से मेरी बार बार यही प्रेयर है कि प्रभु केवल हम बातें ही ना करें अपने आपके दिए हुए इस ज्ञान को हम अपनी बुद्धि में बिठाएं और अपनी लाइफ में हर पल हर जो भी हम अपने कर्म करें उसे आपकी सेवा मानकर करें ताकि जो हमारे ये कर्म है वो तो दिव्य बन सके और हम प्रभु को खुश कर सके। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू एज ऑलवेज नीना जी। ब्यूटीफुली आपने भी पूरे श्लोक अच्छे से समराइज कर दिया और बिल्कुल भगवद गीता देखो सुनना तो अच्छा ही लगेगा हमें नो डाउट है ना लेकिन अगर हम उसको अप्लाई करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बिहेवियर में और अपने बाहरी कामों में भी है ना जैसे कि जो अभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमें रिकमेंड की जाती है अगर वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली है कि लाइफ में बदलाव आएगा ना हम खुद भी खुश रहेंगे हम दूसरों को भी खुश रख पाते हैं फिर। थैंक यू सो मच नीना जी। हाँ जी कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स। हरी बोल।
हरी हरी बोल। आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन था रियली आई ओपनिंग था। आज सबसे पहले तो आपने हमें ये समझाया मोना दी कि हमें सबसे पहले प्रसन्न खुश रहने के लिए अपने विकारों को खत्म करना पड़ेगा। विकारों में जैसे ईर्ष्या विकार है हमारे सभी दुखों का कारण यही है। हम ये नहीं देखते कि प्रभु ने हमें क्या क्या दिया है परंतु हम उन दूसरों के पास क्या क्या है वो हमें हमेशा ही अपने से ज्यादा लगता है और हम उससे दुखी हो जाते हैं। जैसे झोपड़ी वाला घर के लिए घर वाला मकान मतलब कि कोई महल के लिए रोएगा और महल वाला और उसकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी तो इच्छा और ये ईर्ष्या जो है ये हमारे दुखों का कारण है तो हम कभी भी इसमें खुश नहीं रह पाते हैं। तो हमें अपने विकारों का अंत करना है अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं। अगर हम ये सोच के चलें कि हमसे निचले वर्ग में लाइक अगर हमारे भगवान ने दो टांगे दी हैं तो हम कहेंगे कि इन टांगों पे अच्छी मर्सिडीज का बैठ के चलने के लिए टांगे दी है ना लेकिन हम सोचेंगे कि हमें अच्छी कार चाहिए और हम ये नहीं देखेंगे कि प्रभु ने हमें दो टांगे दी हैं। ऐसे भी लोग हैं विकलांग लोग हैं जो चल भी नहीं पाते हैं तो हम वो नहीं देखेंगे हमेशा ऊपर की तरफ देखें हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले ईर्ष्या या और भी बहुत सारे विकार हैं मोह माया इससे हमें खत्म करना है। और आज का जो वर्स था उससे हमने ये सीखा कि भगवद गीता को हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है उसका अध्ययन करना है कि डीपली स्टडी करनी है। जैसे हम एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज होती है थ्योरेटिकल सिर्फ हम पढ़ते हैं थ्योरी को पढ़ा दैट्स इट उसको जाके पेपर में रख दिया बट उसको प्रैक्टिकली हमें करना भी सीखना है। अर्थात कि हम सिर्फ बहुत सारे लोग होते हैं आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो कहते हैं मैंने भी ये चीज फेस की एक्सपीरियंस की है कि हमने तो इतनी बार अपने जीवन में गीता पढ़ ली है पर पढ़ के किया क्या। इसका मैं एक छोटी सी एग्जांपल, जैसे कई लोग कहते हैं हम तो कब से एकादशी का व्रत रखते हैं तो क्या किया। मुझे अब मैं जब से गोलोक एक्सप्रेस के साथ सत्संग स्पिरिचुअल लर्निंग ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ तो मैंने एक्चुअली व्रत क्या होते हैं वो उनका अर्थ समझा और उनको कैसे करना है वो भी सीखा। एकादशी का व्रत बहुत बड़ा व्रत है। लोग क्या करते हैं व्रत तक कि उनका जैसे वो मूक कहते हैं मूक कर दिया तो वो मूक करने के लिए व्रत नहीं होते हैं कि हमने लाइफ में एक टारगेट रखना है कि इनका मोह करना है हमने तो इसलिए आज व्रत रख लेते हैं। नहीं, ये व्रत जो होते हैं वो हमें भक्ति के लिए मिले हैं। हमें उन दिनों अपनी भक्ति हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को बढ़ाना है और ये हमें भक्ति के हमारे जो है कहेंगे कि एक्टिविटीज हैं जो हमें प्रभु के साथ जोड़ती हैं। तो भगवत गीता हमें सिर्फ पढ़नी नहीं है उसे जीना है। हमारे डे टू डे लाइफ में वो हमें सिखाती है कि हमें डे टू डे लाइफ में हर एक्शन कैसा होना चाहिए हमारा। सिर्फ हमने अगर लोगों ने पढ़ी भी है तो उसका हमें ये देखना है कि वो एक्चुअली में अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्या। वो एक्चुअली जो हमें भगवत गीता सिखाती है, अब भगवान जी हमें एवरी टाइम हमारे साथ हमें जैसे अर्जुन जी को सिखाने आए थे उनको बताने आए, क्या एवरी टाइम हमें भी थ्रू आउट लाइफ हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है तो एवरी टाइम भगवान जी हमारे पास नहीं आएंगे, हमें उनकी तरह जैसे अर्जुन जी को उपदेश दिए गीता सार सुनाया हमें नहीं सुनाएंगे। तो इसलिए ये गीता है कि हम उसे पढ़ें समझें और अपनी डे टू डे लाइफ में जहां जहां हमें प्रॉब्लम्स आती हैं और हम उसको उससे ज्ञान लें और उसको वैसे ही उसके अकॉर्डिंगली जो सर्वश्रेष्ठ हमारा एक्शन होना चाहिए वैसे हम उसे करें। तो ये मेरी आज के वर्सेस से लर्निंग थी। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स एज ऑलवेज मीनाक्षी जी, ब्यूटीफुली आपने बहुत ही अच्छी तरह से अपने एग्जांपल के साथ हमें समझाया और बिल्कुल जैसे कि आपने वो जो झोंपटी वाला एग्जांपल के बारे में बताया तो बिल्कुल देखो सिंपल बात है, हम क्या करते हैं हमें दुख जो होते हैं ना हमें किसी का नहीं दिखता, हमें क्या लगता है हमें दूसरों के सिर्फ सुख ही दिखते हैं, है ना। क्योंकि जो दुख होता है ना फ्रेंड्स, दुख व्यक्ति के अंदर होता है, सुख क्या होता है सुख बाहर फैला हुआ होता है ना, मतलब सुख की जो किरणें हैं वो बाहर फैली हुई होती हैं और दुख जो है वो व्यक्ति के भीतर दबा होता है। तो दुख हमें किसी का नहीं दिखता, हमें क्या दिखता है उसका सुख ही सुख दिखता है। दुख क्या दिखता है, दुख हमें अपना दिखता है क्योंकि हमारे भीतर हमने दुख ही दुख रखे होते हैं, मुझे इस चीज का दुख है, मुझे इस चीज का दुख है, इस चीज का दुख है। और दूसरी बात जो कर्म होते हैं अच्छे कर्म जिस जो बात करते हैं हम वो हमें अपने दिखते हैं और जो बुरे कर्म होते हैं वो हमें क्या लगता है वो सिर्फ दूसरे करते हैं। क्योंकि जो हमारा अहंकार होता है ना वो ये कभी मान ही नहीं सकता कि हम भी अशुभ कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं। तो इस तरह से हम जीवन जीते हैं, हम जीते ही गलत है, हम अपने आप को बेस्ट मानते जाते हैं, हम दूसरों को गलत मानते जाते हैं, सिंपल। और यही हमारे दुखों का कारण है। और आपने जो एकादशी व्रत के बारे में बोला बिल्कुल ब्यूटीफुली बताया आपने कि हम सब ऐसा ही करते थे, है ना, व्रत रख लिया और उसकी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है। एक्चुअली जो भी व्रत है, जो भी कर्म कांड नियम है, जो भी हम करते हैं वो सारी बातें भगवान तक पहुंचने के लिए, अपने और परमात्मा का रिलेशन समझने के लिए। लेकिन हम क्या उनमें उलझ जाते हैं, हम इन नियमों में, इन कर्म कांडों में उलझे पड़े हैं और वहीं पे रुक जाते हैं, बस वहीं पे जर्नी हमारी स्टॉप हो जाती है। ये कर लिया, वो कर लिया, बस ये जो एक्टिविटी है इनमें घुस जाते हैं और जो एक्चुअली जो भगवान बताना चाह रहे हैं हमें भगवत गीता में वो कुछ नहीं सुन रहे हम, बाकी सब कर रहे हैं वो नहीं सुनेंगे कि भाई क्योंकि उसमें जोर लगता है। अब भगवत गीता में हमें बताया जा रहा है कि अपनी डिवाइन क्वालिटीज अपनी बढ़ाओ और जो अपनी डेमोनिक क्वालिटीज है उस पर वर्क करो, हमने वो नहीं करना है, हमें बाकी सारे काम करने हैं जो हम देख ही जा रहे हैं अपने आसपास या जो नियम है उनमें घुसे हुए हैं। लेकिन एक्चुअली जो भगवत गीता का संदेश है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, है ना। एक्चुअली जो इसेंस है हमारे शास्त्रों का, एक्चुअली जिसको करने से हमारा जीवन सुखी हो जाता है, हमें वो नहीं करना। और हम समझते भी नहीं इन चीजों को क्योंकि हम खोए हुए हैं दुनियादारी में, हम समझना ही चाहते हैं डीपली इन चीजों को, हम खोए हुए हैं, कभी ये प्रोग्राम चल रहा है कभी ये प्रोग्राम चल रहा है हमारे जीवन में और हम मस्त होए पड़े, हमारे क्वेश्चंस ही नहीं है। क्वेश्चंस भी होंगे तो ये बेकार से क्वेश्चन होंगे, उसने मुझे ये बोल दिया तो मुझे क्या करना चाहिए, उसके पास ये सुख है तो मैं कैसे सुखी हो जाऊं, मेरी डिजायर कैसे पूरी हो, मतलब ऐसे घटिया से क्वेश्चन होते हैं हमारे, है ना। कभी जानने की कोशिश नहीं करते हम कि एक्चुअली मैं हूं कौन, परमात्मा के साथ मेरा क्या रिलेशनशिप है, है ना, ये जन्म मृत्यु की साइकिल क्या है, ये डिजायर्स कहां से आती है, ये सब चीजें हम कुछ नहीं सीखने की कोशिश करेंगे, हम फालतू चीजों में उलझे रहते हैं और फिर दुखी रहते हैं फिर दुनियादारी में उलझे हैं इसलिए दुखी है। अपने भीतर झांकना नहीं है, अपने भीतर भी एक पूरा वर्ल्ड है फ्रेंड्स जिसको हम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे और ना समझना चाहते हैं, इसलिए फिर दुखी है। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। हाँ जी, कोई और है जो फ्रेंड्स अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है हमारे साथ?
हरी हरी बोल, हरी बोल, हरी हरी बोल दीदी जी, हरी हरी बोल जी।
हाँ जी, हाँ जी पूजा जी।
तो जी आज का सत्संग बहुत बहुत अच्छा था। आज आपने बहुत अच्छा समझाया भोग के बारे में, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो जी मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। आज एकादशी व्रत था मेरा, तो जैसे मदर इन लॉ की डेथ हुई थी तो मैं उधर बैठी थी, तो घड़ी घड़ी सुबह के बोल रहे थे खा ले कुछ खा ले कुछ, तो मैं मन ही मन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे बेफजूल की, जो चला गया उसके बारे में ये करते थे, मैं चुप करके सुनती जा रही थी। तो मैंने सोचा कि फिर मैं इधर आ गई अपनी तरफ, जब हम मतलब की पहले अलग रहते हैं, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा सुन लूं, वहां सुनाई नहीं दे रहा था, तो दिल में सोचा कि मैं कुछ बोलूंगी नहीं इनके बारे में, क्योंकि भगवान जी ने बोला कि किसी के बारे में गलत नहीं बोलना। आप ही ने बताया था, जिस दिन से सुन रही हूँ अभी सुन ही रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी बोलना नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं इधर आई, तो फिर मैंने बोला कि जब मैं सुन रही थी तो मुझे अब लगा कि साइलेंट होके सुनने से ऐसा लगता है कि समझ अच्छी तरह आती है। तो भोग के बारे में जैसे आपने बताया कि भोग लगाना कैसे चाहिए, यशोदा भाव रख के भोग लगाना चाहिए, तो हमें ऐसे ही भोग लगाना चाहिए भगवान जी को, ना कि रख दिया, विनती करनी चाहिए भगवान जी हमारा भोग स्वीकार कर लीजिए, हम देने के लिए तो कुछ नहीं है हमारे पास, जो दिया है वो आप ही का ही दिया, वो आपको ही अर्पण। तो ऐसे वो करे, तो मैं जैसे उनकी बातें सुन रही थी तो मैंने हेडफोन लगा के तो हरे राम हरे कृष्ण की माला करने लगी। तो फिर बातें, फिर मैंने सोचा क्या करना चाहिए दीदी, इस वक्त जो कोई बातें करता तो इसकी मुझे समझ नहीं आई कि इस वक्त हमें क्या मन में सोचना चाहिए क्या नहीं सोचना चाहिए। ये मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बड़े हैं सब, तो सब बोल रहे थे ये खाओ वो खाओ, क्योंकि एकादशी व्रत जो होता है ना, वो तो एक होता है कि भगवान ने एक दिन दिया है कि चलो भक्ति कर लो, तो मेरा ध्यान करो, मतलब कि ये खाना इकट्ठा कर लेना सारा दिन, वो व्रत थोड़ी होता है। तो दी मैं आपका सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, गीता तो रोज पढ़ती थी लेकिन अब पता चला कि गीता का अर्थ क्या है, सब कुछ अभी पता चल रहा है, एक एक जो आप बताते हो ना वो माइंड में ऐसे जा रहा है जैसे अंदर से कचरा थोड़ा 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 निकल रहा है, जैसे जैसे आप बताते जाते हैं ऐसे से अंदर घुस रहा है कुछ, तो बहुत अच्छा लगता है सत्संग सुन के। भगवान जी ने कोई होगा मेरा कर्म जो आपके साथ जोड़ा है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। हरी हरी बोल जी।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, ब्यूटीफुल लर्निंग्स रेणु जी, आप बहुत अच्छा बोलते हो, बोला करो, इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा, बहुत अच्छा आपका भाव रहता है। और बिल्कुल हमें देखो, जब भी हम भोग लगाते तो हमें बिल्कुल भगवान के साथ थोड़ी देर बैठना है, 2 मिनट बैठना है, यानी कि रखे और सीधे आगे बैठे, 2 मिनट बैठे, अगर हो सके तो एक माला कर सकते हैं हम वहां पे, या जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैं कई बार माला नहीं भी कर पाती तो मैं 5 टाइम या 7 टाइम हरे कृष्णा का मंत्र कर लेती हूँ और भगवान को सबको बोल देती हूँ कि आप आओ और भोजन ग्रहण करो, है ना। तो इस तरह हमें 2 मिनट बैठना है, यानी कि आए सीधे बस एहसान मारा और रखे और चले गए, ऐसे प्यार से बैठा, जैसे बच्चों कैसे खिलाते हैं हम छोटे बच्चों को, है ना, प्यार से खिलाते हैं ना उनको, बैठेंगे अपने पेरेंट्स को कैसे खिलाएंगे, है ना, पेरेंट्स को कैसे प्यार से बिठाएंगे उनको खिलाएंगे प्लेट में अच्छे से, तो वैसे ही भगवान तो हमारे परम पिता है, तो उनको भी प्यार से उनको खाना खिलाना है ना। और एकादशी व्रत के लिए आप बात कर रहे हो कि
आप कह दो कि मैंने खा लिया, इसमें क्या हो गया, उनको भी खुश रखो, आप नहीं खाना चाहते ना, ठीक है आपने नहीं खाया, ठीक है।
देखो ये हमारे भाव है, साइंटिफिकली भी ये है कि हमें इसलिए व्रत वगैरह बोले जाते हैं कि भाई हमें थोड़ा कम खाना चाहिए, हर वक्त हमारा ध्यान ही खाने में होता है, ये खाना ये खाना ये खाना, तो ये थोड़ा सा ब्रेक होता है व्रत की, चलो यार थोड़ा सा ध्यान हटता है कि चलो हम थोड़ा नाम जाप कर लेते हैं कि छोड़ो यार, हर वक्त खाते ही रहते हैं ना, खाने से क्या हो जाएगा और नहीं खाने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, है ना, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करना। हाँ जी हरी बोल,
ठीक है,
हाँ जी
हरी हरी बोल। हाँ जी संजीव बोल रहा हूँ।
हाँ जी संजीव जी,
हरी हरी बोल। मैं एक्चुअली काफी टाइम के बाद ज्वाइन किया आपका सत्संग, कम से कम 5-6-7 महीने हो गए, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है ऑफिस का, तो इस कारण नहीं ज्वाइन कर पाता, लेकिन आप जब भी घर पे एडिटिंग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो मैं सुनता रहता हूँ, सबके रिव्यूज भी सुनता रहता हूँ, बहुत अच्छे प्रोग्रेस सब लोग अच्छे से कर रहे हैं। आप तो डेफिनेटली जो जिस तरह से आप लगे हो सेवा में, हम 1% भी नहीं कहीं पर, हाँ अपना काम ठीक ढंग से कर रहे हैं, लेकिन सच में यदि स्पिरिचुअली बोले तो स्पिरिचुअली बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ, हर बार बोलता हूँ बहुत कुछ करना है, लेकिन शायद मैं अभी कुछ ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत जो भी सीखा है अप्लाई करते हैं, तो आज जो आपने बोला जेलसी के बारे में, डेफिनेटली यही रहता है कि हम लोगों का, हम दूसरों की तरफ ज्यादा देखते हैं, अपनी तरफ कम देखते हैं। हमें अपने आप में सेटिस्फेक्शन रखनी चाहिए कि हमारे पास क्या है और उसके लिए प्रोग्रेस करते रहना चाहिए। हम वही बोलते हैं कि जब प्रोग्रेस करने के लिए ऊपर देखिए जेलसी का दिमाग मन आए तो नीचे देखिए लोगों के पास तो कुछ भी नहीं, हमारे पास बहुत कुछ। तो ये एक बहुत अच्छी हमें आपने बताया और बहुत फैक्ट है, एवरीबॉडी नोज कि ये इस तरह से ही अप्लाई होता है और ऐसा ही होना चाहिए। जब हम ऊपर देख के जलसी करते रहे तो हम अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और अपने आप में इनफर्टी कम्प्लेक्स लेके आएंगे। जैसे आपने दो तीन दिन पहले मुझे बोला भी था कि आपकी आपने कभी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की, तो ऐसा नहीं है कि इच्छा नहीं पूरी की, लेकिन हाँ ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी कि जो मुझे आगे बढ़ने से रोके। बढ़ने के लिए तो एक्सपेक्टेशन है, लेकिन कुछ डिमांड एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि ठीक है फैमिली के लिए करना है, फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट वी आर। सो वही एक चीज है मन में, बस करते रहना है और बस अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी और ना ही जल्दी करनी, ना ही हमने की है, अदरवाइज हम शायद जहां से हमने स्टार्ट किया था वेयर आर वी टुडे, हम कभी अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। सेटिस्फेक्शन तो और बाकी लाइफ में अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, डाउन आए तो अप्स नहीं रहे, अप्स नहीं आए तो डाउन, दोनों चीजें है कि हर समय एक जैसा नहीं रहता, समय तो चेंज होगा ही, तो अपनी प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए और भगवान को हमेशा थैंक्स ही करना चाहिए क्योंकि हम जो भी हैं उनकी वजह से, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली भगवान हमें कुछ देने नहीं आएंगे या कुछ करने नहीं आएंगे हमारे लिए, वो हमें खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन उनकी वो हमेशा हमारी उंगली पकड़ के हमें चलाते रहते हैं। ये हमेशा आपने बताया और हमेशा हमने सीखा है, तो बस बाकी कर्म करते रहो, अटैचमेंट मत रखो, एक्सपेक्टेशन तो रखो, मैं तो बोलता हूँ आप रखो, भगवान से मांगो, वही है ना देने वाले, बट अटैचमेंट मत रखो किस चीज से, वो सब कुछ उसके नाम, भगवान के नाम पे सब कुछ करते रहो, देखो कहाँ पहुंचेंगे। हमारी लाइफ में तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स है, बहुत ज्यादा हमें मिरेकल्स देखे हैं, बहुत ज्यादा हमने पिछले दो तीन साल में चेंजेस देखी हैं हर चीज में, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो या अपने आप से रिलेटेड हो। अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, कोई बात नहीं, दैट इज हाउ द लाइफ इज। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द गाइडेंस, ऑल द सपोर्ट व्हाट यू हैव गिवन टू अस हरि हरि बोल, नॉट ओनली मी एवरीबॉडी हु जो भी आपको सुन रहे हैं। मैं वही हमेशा बोलता हूँ, आपको लोग तभी सुन रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा नहीं कि उनको सुनना है, इसलिए सुन रहे हैं कि आप इतने अच्छे से करा पा रहे हो, अच्छे समझा पा रहे हो, एक बिल्कुल फ्रेंड की तरह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, बहुत समझा के चल जाएंगे, लेकिन जो एक फीलिंग के साथ अटैचमेंट के साथ आप समझाते हो और जो आप बोलते हैं कि नहीं वो सीख रहे, डेफिनेटली जब हम पढ़ाते हैं तो सीखते ही है, बट कितनी लाइफ चेंजेस हुई होंगी, मैं पर्सनली मानता हूँ जितने भी सारे ग्रुप में है, तो प्रोग्रेस सबकी होगी, हुई होगी। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच संजीव जी, पहले तो इतने टाइम बाद आप आयो, तो उसके लिए तो ये होना चाहिए कि पहले तो आपको आना चाहिए कभी कभी ग्रुप में, क्योंकि आप भी उन चार पांच बंदों में हो, जैसे कि 2020 में हमारा शुरू हुआ था सत्संग, तो फर्स्ट डे से 2020 जुलाई से आप हमारे साथ हो, है ना। पहला सत्संग तो आपने पूरा सुना, लेकिन सेकंड टाइम पांच छह महीने से आप थोड़ा सा बिजी हो गए। आज के लिए थैंक यू कि आप आ जाए और अपना टाइम निकाला, और बिल्कुल मैंने उस दिन इसलिए कहा था कि आपने कभी अपनी डिजायर्स पूरी नहीं की, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया और सीखा भी कि सच में मतलब दूसरों के लिए जीना क्या होता है, ये चीज मैंने आपसे सीखी है कि खाली अपनी डिजायर पूरी करना, ये इसके लिए नहीं आए हम दुनिया में कि चलो मेरे को अपनी फैमिली को देखना है या मुझे ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, तो ये भी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी। और बिल्कुल हम सब एक दूसरे से सीख ही रहे हैं, सिंपल बात है, बोलती है कोई भी आगे पीछे नहीं है, कोई भी सब साथ साथ में चल रहे हैं। हम एक बच्चे से सीख सकते हैं, हम अपने हस्बैंड से सीख सकते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ से सीख सकता है, अपने फ्रेंड से सीख सकते हैं, हम अपने पेरेंट्स से सीख सकते हैं। तो मतलब सीखने के लिए हमें बिल्कुल ओपन रहना है फ्रेंड्स, मैं सबको बोल रही हूँ ये बात, ये नहीं सोचना है बस मैंने सीख लिया, मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे बहुत ज्ञान हो गया, बस भगवद गीता पढ़ ली, बस एक तो ये क्राइटेरिया बहुत होता है हमें कि अगर हमारे किसी का चैंटिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा ईगो आ जाता है, या किसी को भगवद गीता समझ आएगी तो उसमें बहुत ईगो आ जाएगा कि मुझे तो सब कुछ आता है। ये नहीं रखना हमने, हमें का सोचना है मुझे कुछ नहीं आता है, निमित्त मात्र का भाव रखना है। अगर आप ये भाव रखते हो ना कि प्रभु मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे तो बस स्टार्ट है मेरा ये, तो देखो आपको इतनी सारी चीजें आपको पता लगती जाती है ना, क्योंकि आपने अपने माइंड को खुला ओपन रखा है ना, आपको लेनी है नॉलेज, ज्ञान लेना है। और हमारा देखो फ्रेंड सिंपल बात है, हमारे बुद्धि बहुत सीमित है और हमारे जो ज्ञान है वो भी बहुत सीमित है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें पता होनी चाहिए जो हमें पता नहीं है, है ना। तो अगर हम ओपन होकर चलेंगे, सीखने वाले भाव में रहेंगे, तो हम बहुत कुछ सीखते जाएंगे, है ना। थैंक यू सो मच संजीव जी, और आई होप कि आप थोड़ा सा रेगुलर रहोगे। थैंक यू सो मच।
तो ठीक है फिर फ्रेंड्स, हम भजन की तरफ बढ़ते हैं। मीनाक्षी जी, शायद आज आपकी भजन की टर्न है, आप भजन गा सकते हो। हरी बोल।
हरी हरी बोल। आज का जो भजन है वो लकली हमारा आज के सत्संग से ही थोड़ा है रिलेटेड, और आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद भी आए।
मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात मेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबदार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरी बंदगी से बंधा हूँ मैं मालिक, तेरी ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से बंधा हूँ मैं मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल।